प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी भूतादि प्रभवा गुणाः सर्वविकारात्मा विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी माताजी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः न सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी गुण आत्मकानि गुणों से लिप्त इंद्रियाणि इंद्रियां भूत आदि अहंकार प्रभवाः से प्रभावित गुणाः प्राकृतिक गुण मनः मन सर्व समस्त विकार तनाव सुख तथा दुख आत्मा रूप बुद्धि बुद्धि विज्ञान तर्क वितर्क रूपिणी के रूप वाली अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इंद्रियां प्रकृति के गुणों से बंधी हैं और ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहे तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध कर तुरंत देहात्मक संबंध स्थापित करता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। यह अहंकार विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियां गुणों में लिप्त हो जाती हैं। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का पता चलता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति का पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उसे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार के जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्ध जीव की पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूट कर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। अनुवाद को दोहराइएगा। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से बंधी हैं और ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब तक श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी यह बता चुके हैं कि इस ग्रंथ में दस लक्षणों का या तत्वों का वर्णन है और अंतिम जो लक्षण है या विषय है वो है आश्रय तत्व श्री कृष्ण। पहले नौ श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी इन दस तत्वों का, इन दस लक्षणों का संक्षिप्त रूप में वर्णन कर चुके हैं और उसके बाद फिर दसवें श्लोक से लेकर इकतीसवें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी ने ये चर्चा की है कि किस प्रकार से भगवान महाविष्णु द्वारा सर्ग या सृष्टि की उत्पत्ति होती है, कैसे महाविष्णु आश्रय हैं इस भौतिक सृष्टि के और महाविष्णु से सब कुछ उत्पन्न होता है और फिर वो अपने आप में हर चीज को समेट लेते हैं। जो यहाँ के जीव हैं, बद्ध जीव जो भौतिक सृष्टि में पड़े रहते हैं, वो हर दृष्टि से, हर तरह से आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं और अपने मूल स्वरूप को भूलकर यहाँ मिथ्या भोक्ता, मिथ्या पुरुष बनने का प्रयास करते हैं और ऐसी झूठी भावना को ग्रहण करने के फलस्वरूप शुद्ध जीवात्मा को भगवान की महामाया शक्ति और महामाया शक्ति स्वरूप से जो भौतिक पदार्थ हैं वो घेर लेते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध जीवात्मा को ये भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो इस बंधन से छूट जाता है। तो इस भाग में सुखदेव गोस्वामी 32वें श्लोक से आगे सुखदेव गोस्वामी इसी बंधन का या इसी आवरण का वर्णन और गहराई से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि इंद्रियां कैसे आती हैं, उसके बाद में तीन गुण प्रकृति के जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैं वो कहाँ से आते हैं, मन कहाँ से आता है और बुद्धि कहाँ से आती है। इन चार चीजों का उल्लेख यहाँ इस श्लोक में पाया जाता है। गुण आत्मकानी इंद्रियाणी भूत आदि गुणाः, भूत आदि प्रभवाः गुणाः। तो गुण आत्मकानी इंद्रियाणी, तो जो इंद्रियां हैं वो तीन गुणों से उत्पन्न होते हैं। वैसे सृष्टि के सृजन की श्रृंखला में इसी अध्याय के पूर्व किसी एक अध्याय में, शायद पांचवें या छठे अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं कि सबसे पूर्व जो प्रधान है, जो ये भौतिक सृष्टि का अव्यक्त रूप है, उसको उत्तेजित करते हैं महाविष्णु अपने दृष्टिपात से और फिर इस अव्यक्त प्रधान से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व ये भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि का तक का स्थान है और भौतिक सृष्टि इस महत्तत्व से उत्पन्न होती है। महत्तत्व के उत्पत्ति के साथ साथ भगवान की काल शक्ति भी कार्य करना शुरू करती है। काल शक्ति ये भी भगवान का ही एक रूप माना जाता है और काल शक्ति ही भौतिक सृष्टि को आगे चलाती है। साथ साथ में जब भगवान का दृष्टिपात होता है और होते रहता है क्रमशः इस सृष्टि के सृजन के हर स्तर पर, साथ साथ में भगवान की काल शक्ति भी कार्य करती है। इस सृष्टि का सृजन जो है इसकी तुलना हम रसोई से कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक पात्र में कुछ पका रहा होता है तो कई चीजें साथ साथ होती हैं। एक तो अग्नि जल रही होती है नीचे से, एक पात्र की आवश्यकता होती है, साथ साथ में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो रसोई करता है, जो हिलाते रहता है, बीच में कुछ नमक डाल देता है, कुछ मसाला डालता है, कुछ न कुछ करते रहता है। इसके बिना तो आग भी हो, पदार्थ भी हो, फिर भी वो व्यंजन ठीक से तैयार नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से क्रमशः इस भौतिक सृष्टि का सृजन भगवान कराते हैं, अपने दृष्टि के द्वारा और अपने काल शक्ति के द्वारा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जिन पदार्थों का उत्पादन हुआ है उनका भी और आगे मिश्रण होता है, और मिश्रण होते होते आगे और भी अनेक और विस्तारित रूप से पदार्थ निर्माण होते रहते हैं। तो ये भगवान की दृष्टि और काल शक्ति दोनों हर स्तर में कार्य करती हैं, और इनके बिना सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जब महत्त्व का उत्पादन हो जाता है तो महत्त्व से फिर मिथ्या अहंकार आ जाता है। मिथ्या अहंकार या महत्त्व से सब कुछ विभाजित हो जाता है तीन गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से मन आदि उत्पन्न होता है, रजोगुण से बुद्धि आदि उत्पन्न होती है, बुद्धि और इंद्रियां भी हैं उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से तमोगुण से भी अनेक चीजों का उत्पादन होता है। ऐसे क्रमशः फिर जब ये सारे तत्व एक के बाद एक निर्मित होने लगते हैं तो हर स्तर में हर कदम भगवान की दृष्टिपात और काल शक्ति कार्य करते रहते हैं। और अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं इसमें भी भगवान की दृष्टि की आवश्यकता है। अगर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती है तो संसार नहीं चल सकता है। तो ये भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ चल रहा है, और भगवान के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और भगवान अपने इस सारे सृष्टि का कार्य केवल अपने दृष्टि से चलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति चिकलयन्ति चिरं जगन्ति। कि भगवान अपने दृष्टि से हर एक कार्य कर सकते हैं, या अपने एक अंग से अनेक अंगों का कार्य वो संपन्न कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ सृष्टि को संभालने का कार्य भगवान के लिए मुश्किल नहीं है, केवल अपने दृष्टि से वो कर रहे हैं। उसके बाद में जब ये तीन गुण निर्मित हो जाते हैं फिर आगे चल के क्रमशः तन मात्राओं का उत्पादन होता है, और उनके बाद में सारी इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां सब निर्मित हो जाती हैं क्रम से। तो यहां बताया गया है इस श्लोक में कि इंद्रियां प्रकृति के गुणों से बंधी हैं, अर्थात इन तीन गुणों से उत्पन्न होती हैं। तो ये इंद्रियों के उद्गम है। इंद्रियां कहां से आई? इंद्रियां तीन गुणों से आई। और ये तीन गुण कहां से आए? तो यहां इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूतादि प्रभवा गुणाः, कि भूत आदि मतलब जो मिथ्या अहंकार महत्त्व आदि है, इनका प्रभव या इनका उद्गम क्या है, या गुणों का उद्गम क्या है? भूत आदि। इसका मतलब है कि ये तीन गुण आए हैं मिथ्या अहंकार या महत्त्व से। और तीसरी बात कौन सी है? मनः सर्व विकारात्मा। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। सर्व विकार आत्मा, और विकार शब्द का अर्थ श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं तनाव, सुख या दुख। तरह तरह के अनुभव मन के ऊपर पड़ जाते हैं, और इससे मन अनुभव करता है कि ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इस प्रकार से मन ये द्वंद्वों के चक्कर में फंस जाता है। और जहां तक बुद्धि का सवाल है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बुद्धि विज्ञान रूपिणी। बुद्धि यह ये विज्ञान का रूप है। विज्ञान का मतलब ये है, वास्तव में यहाँ तर्क वितर्क कहा गया है, वास्तव में ये विवेक बुद्धि है। विवेक करने की जो क्षमता है वो बुद्धि में होती है। तो बुद्धि का कार्य होता है भेद करना कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है। मन का काम है अनुभव करना, और अनुभव जिस प्रकार से होता है उससे स्वीकार करना या त्याग करना। संकल्पो विकल्पो मनः, मन का काम होता है किसी चीज को स्वीकारना अगर वो अच्छा लगे तो, और अगर अच्छा नहीं लगे तो उसको त्याग देना। और हम देखते हैं कि हमेशा हम ये कार्य करते रहते हैं। हर क्षण हम कुछ तो स्वीकार करते हैं फिर त्याग देते हैं, किसी चीज को पसंद करते हैं फिर उसी चीज को नापसंद करते हैं। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारे प्रति उसने एक कठोर शब्द बोल दिया तो सारा मत बदल जाता है, पूरे हमारा मन कहता है ये कितने अच्छे आदमी नहीं है, पहले एक क्षण पहले सोच रहे थे अच्छे आदमी है। तो ये मन का काम है, स्वीकार करना त्याग करना, अच्छा लगना बुरा लगना। तो ये द्वंद्व में पड़ा रहता है मन। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मन है सर्व विकार आत्मा। ऐसे विकार या तनाव या द्वंद्व उत्पन्न होते हैं मन के अंदर, तो मन का कार्य ही ऐसा होता है। और यहाँ विज्ञान रूपिणी बुद्धि, लेकिन बुद्धि को ऐसे नहीं होना चाहिए, बुद्धि को विज्ञान में स्थित होना चाहिए, विवेक की क्षमता में स्थित होना चाहिए। बुद्धि का काम होता है कि ये देखना कि मन के लिए क्या चीज अच्छी है। भले मन कहता है कि ये अच्छा है लेकिन बुद्धि कहेगा नहीं ये अच्छा नहीं है। मन कहता है कि चलो बाहर जाके होटल में कुछ खाएं, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं हमें केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, बाहर की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। तो ये बुद्धि और मन में सदैव संघर्ष चलता है। मन जो कि इतने समय से केवल इन द्वंद्वों में फंसा हुआ है और एक छोटे से बच्चे के समान है जो हर जगह जगह जाके ये चाहिए वो चाहिए करते रहता है, जो भी उसके मन को लुभा देता है आकर्षित करता है बच्चा उसी चीज को चाहता है। तो ठीक उसी प्रकार से मन भी एक छोटे बच्चे के समान होता है या एक बंदर के समान होता है, सदैव चंचल रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्य वायुरिव सुदुष्करम। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि ये मन जो है ये बहुत चंचल है हे कृष्ण, लेकिन चंचल होते हुए बहुत बलवान भी है सुदृढ़ भी है और अपनी इच्छा को आगे बढ़ाकर ही लेके जाता है और जीव को बहा के लेके जाता है। तो जब मन के ऊपर किसी गुण का प्रभाव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति उस दिशा में बह जाता है। तो यहाँ पर तीन गुणों का प्राधान्य है, इसलिए अगर व्यक्ति अपने आप को बहने से बचाना चाहता है तीन गुणों में तो अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर बुद्धि शक्तिशाली बन जाए तो वो बुद्धि मन को वश में कर सकता है, अन्यथा बुद्धि मन जो है बुद्धि को भी बहा के लेके जाएगा। उपनिषदों में ये सुंदर उपमा या दृष्टांत दिया हुआ है एक रथ का, जो पांच घोड़े हैं इस रथ को चलाने वाले वो हमारी पांच इंद्रियां हैं, और जो लगाम है जिससे घोड़े बंधे हुए हैं वो लगाम हमारा मन है। जो सारथी है जो रथ को चला रहा है वो हमारी बुद्धि है, जो रथ है वो शरीर है, और उस रथ के अंदर बैठने वाला जो सवारी है वो आत्मा है। अब होता ये है कि घोड़े बड़े बलवान होते हैं और अगर सारथी उनको ठीक से नियंत्रण में नहीं रखे तो विचार कीजिए कि क्या होगा। पांच घोड़े हैं, सारे घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागते चले जाएंगे तो रथ की हालत क्या होगी और रथ के अंदर बैठने वाले सारथी की क्या हालत होगी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इंद्रियों को वश में नहीं किया जाए तो फिर ये इंद्रियां हमें तरह तरह अलग अलग दिशाओं में ले जाएंगे। कभी हमारे आंख कुछ कहेंगे इस दिशा में ले जाएंगे, हमारे कान कुछ दूसरी चीज कहेंगे दूसरी दिशा में ले जाएंगे, हमारे जिह्वा हम इस स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ आकृष्ट करके ले जाएंगे और इस प्रकार से केवल हमारी इंद्रियों के मांगों को पूरे करते करते हमारा सारा जीवन बीत जाएगा। और इस प्रकार से बद्ध जीव अनादि काल से ऐसे अनेक शरीरों को बदलते आया है, क्योंकि मन जो है, लगाम जो है वो बहुत हल्का है, ढीला है, लगाम ठीक से घोड़ों को खींच नहीं रही है, क्योंकि मन कमजोर है। मन बिल्कुल इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां गुणों के वश में है, और बुद्धि कमजोर है। अगर बुद्धि भी शक्तिशाली होती तो सारथी अर्थात बुद्धि लगाम को सख्ती से पकड़ लेते, जोर से खींच लेते। जब लगाम खींचा जाता है तो घोड़े अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में लाना बहुत आवश्यक है, और इसी बात के ऊपर श्री प्रभुपाद जी का सारा तात्पर्य आधारित है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि बुद्धि का काम है विवेक करना, इसलिए बुद्धि के द्वारा हमें विश्लेषण करना चाहिए कि सच क्या है, सत्यता क्या है, मिथ्या क्या है, हितकारी क्या है, हानिकारक क्या है, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए, किस चीज को नहीं करना चाहिए। तो ये बुद्धि का काम है, और बुद्धि का प्रयोग करके मन के द्वारा जीव का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। भगवत गीता के छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से जीव का उद्धार होना चाहिए। आत्मनात्मानम, ये आत्मा शब्द जीव को संबोधित करता है। कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है, और कभी कभी आत्मा ये शब्द शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेत आत्मना, आत्मा आत्मनात्मानम, आत्म आत्मना, कि अपने मन से जीव को का उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयेत, मन से जीव का पतन नहीं होना चाहिए। जब मन कमजोर हो जाता है तो उससे वो बद्ध जीव का पतन का कारण हो जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम, मन के द्वारा जीव का उद्धार होना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए। आत्मनो ही बंधुर आत्मना है, आत्मा ये मन जो है ये जीव का बंधु है। आत्मैव रिपुर आत्मना है, और साथ साथ ये मन जीव का शत्रु भी है। कैसे बंधु है और कैसे शत्रु है? बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मन को वश में किया जाता है तब मन जीव का बंधु बन जाता है, मित्र बन जाता है, लेकिन जब मन नियंत्रण में नहीं रहता उस समय वही मन जो पहले शत्रु था, नियंत्रण करने के बाद वो शत्रु बन जाता है। तो हमारे ऊपर है, अगर हमने मन को नियंत्रण में कर लिया तो हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा, अगर मन को वश में नहीं किया तो यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। लेकिन मन को वश में कैसे किया जाए? बुद्धि से। और जब इस प्रकार से बुद्धि शक्तिशाली बना के मन को वश में करते हैं तो क्या होता है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अगले ही श्लोक में फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य, जब मन को जीत लिया जाता है तो हम प्रशांत हो जाते हैं, प्रकृष्ट रूपेण शांतः, सच्चे शांति की प्राप्ति करते हैं, परमात्मा समाहितः। और ऐसे अवस्था में हृदय हमारा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, हम भगवान तक पहुंचने के लिए योग्य हो जाते हैं। और फिर शीत उष्ण सुख दुख, जो गर्मी है ठंडी है, सुख है दुख है, तथा मान अपमान यो हो, फिर मान अपमान ये जितने भी सारे द्वंद्व हैं इनमें हम स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, फिर ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर हम बिल्कुल अटल हो जाते हैं, कूटस्थ आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो जाते हैं। समलोष्टाश्म कांचन, फिर हम सोने में और सड़क में पड़े हुए पत्थर में कोई अंतर नहीं देखते हैं। तो ये उस व्यक्ति की परिस्थिति है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है और मन को अपना बंधु बना लिया है। फिर मन हमारी सहायता करेगा, परंतु जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो शत्रु बन के हमें इस भवसागर में डुबा के रखता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि मन बुद्धि को कैसे, मन को वश में करना चाहिए। बुद्धि अगर कमजोर है, बुद्धि अगर दूषित है, तो ये दूषित बुद्धि को शुद्ध कैसे बनाया जाए। सुखदेव गोस्वामी इसी स्कंद में आगे किसी एक अध्याय में बताते हैं, जब हम भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान के चरण कमलों से शुरू करते हुए भगवान के मुखारविंद तक क्रमशः बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे जैसे हम ध्यान लगाकर हमारे मन को केंद्रित करते हैं भगवान के सुंदर अवयवों पर, तो धीरे धीरे मन भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो भगवान का दर्शन करने से, मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करने से बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है, शक्तिशाली बलवान हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और विशेष करके भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना या भगवान के संदेश का श्रवण और कीर्तन करना, इससे हमारी बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है। तो जब हम आते हैं भगवान के सामने दर्शन करने के लिए तो हमें बहुत सावधानी से दर्शन करना चाहिए, बहुत भक्ति भाव से दर्शन करना चाहिए और आराम से करना चाहिए। खड़े होकर भगवान के सामने यहाँ भगवान के सुंदर रूप के हरेक अवयव का दर्शन करना चाहिए, चरण कमलों से शुरू करते हुए सीधे फिर मुखारविंद की ओर धीरे 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 चलना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे चिंतन से सारे चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है। जब हम श्रीमद् भागवत, भगवद गीता आदि ऐसे ग्रंथों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, इससे भी हमारी बुद्धि मजबूत हो जाती है। सिद्धांत बोलिया ना करो आलस, कविराज गोस्वामी कहते हैं, अरे ये दर्शन है, फिलॉसफी है, ये शास्त्र है, इसको क्या पढ़ना बहुत मुश्किल है, नहीं समझना चाहिए, नहीं समझ पाते हैं तो नहीं सुनना है, अभी उब जाते हैं, नींद आ जाती है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं नहीं, आलस नहीं करना, सुनना चाहिए। ये कोई तर्क है, कोई वाद है, क्या है, स्पष्टीकरण कैसे किया जाए तत्वों का, हालांकि हमारे लिए थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, नींद आ भी जाए, फिर भी हमें सुनना चाहिए। ये रोजाना श्रीमद् भागवत और भगवद गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि जो है मजबूत हो जाएगी। और जब बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो फिर मन को वश में कर पाएगी, फिर सारथी जो है लगाम को बड़े सख्ती से पकड़ लेगा और जबरदस्ती वो पांच घोड़े जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मद्नाध्यायन्त उपासते। तो भगवान श्री कहते हैं, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हमारे समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते, कर्म संन्यास उनको अर्पण कर लेते हैं, माम ध्यायन्त उपासते, और सदैव उनके सुंदर रूप के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर, उनके लीलाओं के ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं, तब आगे चल के क्या होता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थम मैया वेशित चेतसाम। तो भगवान कहते हैं मैय आवेशित चेतसाम, ऐसे भगवान के गुणों के ऊपर, रूप के ऊपर, कथाओं के ऊपर मन को केंद्रित करने से ऐसे बुद्धि सख्त हो जाती, बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, मैय आसक्त, तो ऐसे आसक्त हो जाती है भगवान के ऊपर। और बुद्धि ऐसे हो जाने पर भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी बुद्धि और जिनका मन मेरे ऊपर केंद्रित सदैव रहता है, अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करने वाला हूं। मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार के सागर से मैं निजी स्वयं आके उनका उद्धार करूंगा। तेषां अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी, समुद्धरता भवामी, मैं स्वयं हो जाता हूं। न चिरात पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, न चिरात मतलब लंबे समय से नहीं, शीघ्र ही मैं आ जाऊंगा ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का उद्धार करने के लिए। मैया वेशित चेतसाम, क्योंकि उसका चित्त जो है मुझ में अविष्ट है। तो प्रभुपाद जी भी यहां कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए हमारे उद्धार के लिए, इस भव बंधन से निकलने के लिए। तो जब मन को केंद्रित करते हैं भगवान की कथा आदि में और उस प्रकार से बुद्धि लगाते हैं समझने के लिए और आगे हमारी सेवा करने के लिए, और बुद्धि और मन दोनों भगवान में ऐसे केंद्रित हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं फिर मैं आऊंगा। समुद्धरता भवामी अहम, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा उद्धार करने के लिए, और उस जीव को इस भयंकर भव सागर से उठाकर मेरे धाम में लौट के ले जाऊंगा। प्रभुपाद जी की एक किसी ग्रंथ में कहा पता नहीं, एक ग्रंथ में एक सुंदर चित्र है, यहां तो नहीं है लेकिन चित्र में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति सागर में डूब रहा है, अकेला है, और ऊपर भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आए हैं और अपना हाथ ऐसे सामने किए हुए, अपने सुंदर कर कमल उन्होंने सामने किए हुए हैं, और जो डूबता हुआ व्यक्ति है वो बहुत तड़प रहा है और दोनों हाथ उठाकर उसने शरण लिए हैं भगवान के, और स्वयं भगवान जो है वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए हैं और चलो आओ आओ अभी ले जाता हूं तुम्हें। तो वो इसी श्लोक के लिए चित्र है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसा, कि भगवान अपने वचन को पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा, क्यों डरते हो? अगर थोड़ा कुछ दोष या थोड़ी कोई कमी इधर उधर रह भी जाती है तो मैं देख लूंगा, क्यों चिंता करते हो? केवल अपने बुद्धि को मुझ में लगाओ, मेरी कथाएं सुनो, मेरे ग्रंथों को पढ़ो, अपनी सारी इंद्रियों को, मन को मेरे सुंदर रूप में स्थित करो, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई कमी भी त्रुटियां भी हो जाती हैं इसमें तो मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, क्यों चिंता करते हो? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से इस प्रकार से मेरा चिंतन मनन करता है, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी सेवा में नित्य युक्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा में या ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी हो तो मैं पूरी करता हूं, और अगर जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो यहां भी भगवान वही कहते हैं, अहम शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं करूंगा। तो यहां पर भी 12वें अध्याय के श्लोक में, भगवद गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता। तो हमें हमारे भक्ति पथ में निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में तरह तरह के भौतिक विचार मरते रहते हैं, हम माला करते रहते हैं लेकिन फिर भी मन भटकता रहता है, और अगर नींद भी आ जाती है, तो हमें पूरा पूरा प्रयास तो करना चाहिए बुद्धि के प्रयोग से, बुद्धि के इस्तेमाल से। बुद्धि से अपने आप को जागृत अवस्था में रखना चाहिए, जप के समय, कथा के समय, प्रवचन के समय, पढ़ाई करते समय। और बुद्धि का प्रयोग अगर ऐसे किया जाए, बुद्धि मतलब दृढ़ता, तो फिर हम हमारी साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे और फिर भगवान की कृपा शीघ्र ही आ जाएगी। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी जप करने के लिए जो दृढ़ता है वो नहीं आ रही है मुझे, या सुबह उठने के लिए जो दृढ़ता है वो नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने तुरंत एक वाक्य में उत्तर दिया, जिसकी दृढ़ता नहीं है वो पशु है। पशु अर्थात बच्चा, जैसे बच्चा है उसके अंदर दृढ़ता नहीं होती है, चंचलता बहुत होती है, कभी ये करता है तुरंत उसे छोड़ देता है, दूसरी चीज उठा लेता है फिर छोड़ देता है, कोई एकाग्र चित्त से दृढ़ता से कोई काम उठाकर उसको करता नहीं है। तो बुद्धि का ये काम है दृढ़ता प्रदान करना व्यक्ति को। तो बुद्धि को मजबूत बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ये श्रवण कीर्तन दर्शन आदि का मार्ग बहुत ही उपयुक्त है और लाभदायक है। प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम हमें बताया है वो पूर्ण है, इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है हमारे सुबह का कार्यक्रम है उसको हमें करते जाना है, हमें ग्रंथों का अध्ययन, कथा का श्रवण करते जाना है, सेवा करते रहना है, बस होगा शुद्धिकरण, होते जा रहा है। और जैसे भगवान वचन देते हैं, समुद्धरता भवामि अहम, समुद्धरता भवामि, वो हो जाएंगे हमारे उद्धारक। तो ये भक्ति पथ परिपूर्ण है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हाँ, कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हाँ जी, प्रश्न ये है कि मन तो एक कारण है और आत्मा के बिना क्या ये मन कार्य कर सकता है, ये प्रश्न है ना? तो जो रथी है, जो सवारी है, रथ में बैठा हुआ आत्मा रूपी, तो उसका उसकी क्या भूमिका है सारे उपमा में? बेचारा चीखते जा रहा है पीछे बैठ के, कोई सुने तब ना, ना सारथी सुन रहा है ना घोड़े सुन रहे हैं, अरे कहाँ ले जा रहे हो, अरे क्या हो रहा है, देखो देखो संभालो संभालो आगे। जैसे कभी कभी ड्राइवर बहुत तेजी से चला रहा है पीछे, अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन ड्राइवर सुनता नहीं पीछे वाले की बात, अपना चलाया जाता है। ये हालत है। आत्मा किस चीज के लिए तरस रही है? आत्मा कृष्ण के लिए तरस रही है, लेकिन आत्मा भी अभी माया से ढकी हुई है। आत्मा की ये आत्मा चाहता ही है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करे, लेकिन अगर आत्मा की बात बुद्धि सुने तो बुद्धि मजबूत हो जाए, फिर मन को वश में करना आसान हो जाएगा। तो ये जो कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है, ये आत्मा को जगाने की बात है, बुद्धि को फिर से तेज करने की बात है। प्रश्न ये है कि अभी इसका मतलब है कि आत्मा अपने आप को मन बुद्धि शरीर से एक समझती है। हाँ बिल्कुल यही है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मरुतेन अर्थं यत् कृतं चापि पद्यते। यया सम्मोहितो जीव, जीव सम्मोह में पड़ गया है, माया का मोह। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं, तीन गुणों के माया में पड़ गया है, तीन गुणों के वशीभूत हो गया है। परह अपि, हालांकि ये आत्मा परह है, परह मतलब आध्यात्मिक है, भौतिक गुणों से परह है। परोपि मनुते अनर्थम, परह होने के बावजूद वो अपने आप को इस अनर्थों से, इन तीन गुणों से समान समझता है, से एक समझता है। ये माया है कि आत्मा अपने आप को भौतिक समझता, मैं अपने आप को शरीर समझता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, तो ये आत्माया है। प्रश्न ये है कि बताया गया था कि सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है और बुद्धि रजगुण से उत्पन्न होती है, तो फिर मन को वश में बुद्धि से कैसे किया जाता, ऐसे क्यों है कि बुद्धि रजगुण से उत्पन्न हुई है? तो श्रील प्रभुपाद जी उस जगह तात्पर्य में, किसी आगे इसी स्कंद में कहीं है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्यों में कि इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक सृष्टि में रहने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि के बिना कोई भी जी नहीं सकता यहाँ पर। तो यहाँ संघर्ष करने के लिए, प्रकृति के कड़े नियमों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि यह संघर्ष मतलब रजगुण से उत्पन्न होता है, तो इसलिए बुद्धि ये रजगुण से उत्पन्न होता है। और जब बुद्धि शुद्ध किया जाता है तब फिर वो मन को वश में कर सकता है, अर्थात वो बुद्धि दूषित रहती है। ये थोड़े सांख्य दर्शन है ये, और दूसरे और तीसरे स्कंद में सांख्य दर्शन काफी विस्तार में हम सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
अचानक नहीं, मैं उनको बाद में फोन करता हूँ। हरे कृष्ण।